राजपुरोहितजी के बतायानुसार सभी अपने अपने काम पर लग चुके थे। इन सब के बीच अलीजा तहखाने में अदृश्य होकर उन मूर्तियों को ढूंढ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें यहाँ से बाहर ले जाया जा चुका है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उन्हें कोई छूता तो अब तक उनके इफेक्ट में आ चुका होता। इतने अच्छे से उन्हें यहाँ पर छुपाया था, लेकिन पता नहीं राजपुरोहित जी को भी उन्हें नष्ट करने का ख्याल क्यों आया। इससे अच्छा त्रिशान यहाँ पर होता तो वो मेरी ज्यादा अच्छे से मदद कर सकता था। अलीजा खुद से बातें करते हुए उन मूर्तियों को ढूंढ रही थी। उन्हें ढूंढते हुए वो तहखाने के अगले कोने तक पहुंच चुकी थी। ये लो, ये तो यहाँ पर ख़त्म भी हो गया। अगर इस तहखाने में मूर्तियाँ नहीं हैं तो कहाँ गई होंगी? बोलते हुए अलीजा ने तहखाने के आखिर में लगाए एक पत्थर को जादू से हटाया। जैसे ही वो पत्थर हटा, अलीजा की आंखें फटी रह गईं। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? मुझे राजपुरोहित जी को यहाँ बुलाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे फिर से इसे बंद करना होगा। अगर ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पर रोज़ किसी का आना जाना रहा होगा। अलीजा ने तुरंत उस पत्थर को वहाँ पर वापस लगा दिया। वो जल्दी से तहखाने के बाहर आई और राजपुरोहित जी को ढूंढने लगी। आकांक्षा घूमते हुए महल के केंद्र तक पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि महल को सजाया जा रहा था। महल देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था कि चाहकर भी आकांक्षा का वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था। वो एक झरोखे के पास छुपकर अंदर की तरफ झांकने लगी। सभी अपने अपने काम में लगे थे। वहां एक औरत जिसने शाही लिबास पहना था और गहनों से लदी हुई थी, उसने जोर से आवाज़ लगाकर बोला, अरे चंपा, तुम इधर आओ। जमुना, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं देनी चाहिए। पता है ना आज का दिन कितना शुभ है? ज़रूर, ये रिवांश की माँ होगी। पिछली बार भी मैंने सपने में देखा था, आकांक्षा ने उसकी तरफ देखकर सोचा। उनकी आवाज़ लगाने पर एक दासी दौड़कर उनके पास आई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ रानी सा, जैसा आपने बताया वैसा सब इंतज़ाम हो गया है। आप सुबह से दौड़ धूप में लगी हैं, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। मैनावती, अब तो हम तभी विश्राम करेंगे जब हमारे राजकुमार रिवांश हमारे सामने आएंगे। उनके पिताजी ने उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था। अब तक तो उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी। पूरे 10 साल बाद हम अपने रिवांश को देखेंगे। जब वो गए थे तब 15 साल के थे। कितने बड़े हो गए होंगे ना हमारे बेटे। अरे अब तो उनकी शादी की भी उम्र हो गई होगी। अब तो एक पल का भी इंतज़ार नहीं होता। बस अब तो वो आंखों के सामने आएंगे तभी इन्हें सुकून मिलेगा। उनकी बात सुनकर आकांक्षा की आंखें नम हो गईं। उसने थोड़ी भारी आवाज़ में खुद से कहा, ये तो जानती तक नहीं कि इनका बेटा अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। दूसरी दासी चंपा भी उस तरफ दौड़कर आई। उसने रानी मैनावती को फूल दिखाते हुए पूछा, ये ठीक है ना रानी सा? और क्यों चिंता करती हैं? बस आज रात की बात है, ये रात गुजर जाए फिर सुबह तो राजकुमार आपकी आंखों के सामने होंगे। मैनावती ने जवाब दिया, ये रात ही तो नहीं गुजरती, उनके इंतज़ार में हमने कितनी ही रातें बिता दी, लेकिन ये एक रात का इंतज़ार हमारे पिछले 10 सालों के इंतज़ार पर भारी पड़ रहा है। ये तो बस एक माँ का प्यार है रानी सा, जो बरसों तक अपने बेटे का इंतज़ार करती रही। जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ कुछ घंटे और सही, वहाँ मौजूद एक बुज़ुर्ग दासी ने कहा। सच कहा, हम एक बार रसोई घर की तरफ देखाते हैं सब कुछ अच्छे से बन रहा है या नहीं, कहकर रानी मैनावती वहाँ से रसोई घर में जाने के लिए मुड़ गईं। उनके पीछे से उस बुज़ुर्ग दासी ने मंद मंद मुस्काते हुए कहा, एक माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो महलों की रानी हो या उन्हीं महलों में काम करने वाली साधारण सी दासी। अब रानी सा को ही देख लो, कभी कुछ भी अपने हाथों से नहीं किया, लेकिन आज जब राजकुमार रिवांश के आने की खबर मिली है, इनके पैरों में तो मानो घुंघरू बन गए हों। हर एक इंतज़ाम अपनी आंखों के सामने करवा रही हैं ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। चलो चलो, अब तुम लोग भी जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, ज़्यादा समय रह नहीं गया। मैनावती वहाँ से शाही रसोई घर की तरफ मुड़ी। उसने रसोई के अंदर प्रवेश किया जहाँ अलग अलग पकवानों की महक से रसोई घर की शोभा बढ़ रही थी। पकवानों की गंध नाक में आते ही रानी मैनावती के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा, यहाँ भी सारा काम अच्छे से हो रहा है, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ हमारे बेटे की पसंद के हिसाब से ही होना चाहिए। तुम लोगों को जो भी नए पुराने पकवान बनाने आते हैं वो सब बना दो, इतने सालों में पता नहीं हमारे बेटे की पसंद बदल गई होगी तो। जी रानी सा, वहाँ मौजूद शाही रसोइये ने कहा। रसोई घर की सारी तैयारियां देखकर रानी मैनावती वहां से वापस चल दी। रसोई घर से निकलकर वो गलियारे में आगे पहुंची ही थी कि उन्हें सामने की तरफ आकांक्षा दिखाई दी, जो कि वहां से छुपकर अंदर की तरफ ताक झांक कर रही थी। अंदर महल की सजावट देखने के चक्कर में वो ये भूल चुकी थी कि सपने में रानी मैनावती उसके पास आ गई थी। अगले ही पल वो बिजली की तेजी से आकांक्षा के पास गई और गुस्से में उसका हाथ पकड़कर पूछा, ए लड़की, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? उनके अचानक हाथ पकड़ने की वजह से वो थोड़ा घबरा गई। घबराहट के मारे उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। अब मैं इन्हें क्या जवाब दूं? सपने में सब कुछ देखने के बावजूद मैं यहाँ पर खड़ी रही, मैं भी ना। आकांक्षा रानी मैनावती को जवाब देने के बजाय अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर मैनावती ने उसे उसी सख्ती से पूछा, तू बता रही है या तुझे राजा साहब के सामने पेश करूं? नहीं नहीं आंटी, आई मीन रानी साहिबा, आकांक्षा ने अटकते हुए मासूमियत से जवाब दिया। तो फिर बताओ कि तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा, मैनावती ने एक बार फिर पूछा। आकांक्षा, आकांक्षा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। आकांक्षा, ये कैसा नाम है और तुम यहाँ महल में क्या ताक झांक कर रही हो, मैनावती इसे ऊपर से नीचे तक घूर कर बोली। पहनावा तो हमारे जैसा ही है, लेकिन तुम हम में से एक नहीं लगती हो, अब बताओ कि यहाँ महल में कर क्या रही हो। वो मैं रास्ता भटक गई थी, काफी बड़ा है ये महल, आकांक्षा ने चारों तरफ देख कर कहा। आपको रास्ते मिल जाते हैं? उसकी बात सुनकर मैनावती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हम हमारे ही महल में क्यों खोएंगे, लगता है तुम यहाँ पहली बार आई हो, किसी दासी की बेटी हो, किसके साथ आई हो? मैनावती आकांक्षा से बात कर रही थी कि तभी आकांक्षा की नजर सामने खड़े रिवांश की तरफ गई, जो कि अपनी माँ को स्नेह भरी आंखों से देख रहे थे। उसके साथ कहाँ रह गए थे तुम, आकांक्षा ने सामने की तरफ इशारा किया तो वहाँ सामने रिवांश खड़ा था। आकांक्षा के इशारा करते ही मैनावती ने मुड़कर देखा तो सामने रिवांश खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, वो दौड़कर उसके पास गई और उसके मुंह को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, आप पहले कैसे आ गए, आप हमारे रिवांश होना।